इनायत की आंखें डर से भर गई थीं जब उसने रियाज के माफिया होने की खबर सुनी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। रियाज की बेरहमी तो उसने देख ही ली थी, लेकिन जब उसने ये सुना कि वो किसी का कत्ल भी कर सकता है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका पूरा चेहरा डर से भर गया था और उसके हाथ कांपने लगे थे। ये इंसान सच में पागल है, और कभी वो अपने पागलपन में अगर इनायत को जान से मार देगा या फिर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो इनायत क्या कर लेगी? मुराद ने इनायत की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है भाभी जान, आपके चेहरे पर पसीना क्यों है? इनायत ने घबराते हुए मुराद की तरफ देखकर कहा, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपके भाई ने अपने गुस्से के चलते मेरी जान लेने की कोशिश की तो क्या होगा? मैं खुद को कैसे बचाऊंगी? इनायत की बात पर मुराद हंसने लगता है और कहता है, अरे भाभी जान, वो ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, पता है वो माफिया हैं और एक कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लेकिन फिर भी वो आपको जान से नहीं मारेंगे। अगर ऐसा होता तो इस घर में हम सब जिंदा नहीं होते, क्योंकि हमने तो ऐसे बहुत से कांड किए हैं जिसे अगर मारने पर आए ना तो रियाज भाई हम सबको एक दिन में 100-100 बार जान से मार दें, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रियाज भाई थोड़े से सख्त मिजाज के ज़रूर हैं, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। मुराद इनायत के साथ बातें कर ही रहा था कि एक बार फिर कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की जिसने चूड़ीदार सूट सलवार पहना हुआ था वो धन धनाते हुए अंदर आती है और मुराद पर चिल्लाते हुए कहती है, हाय अल्लाह, मुझे पता ही था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे, और अब तक तो अपनी बातों से पका पका कर तुमने भाभी जान को परेशान भी कर दिया होगा। दूर हटो यहाँ से, तुम्हारी बेवकूफ़ों वाली बातें जिसके कोई सर पैर नहीं है ये सुनने में भाभी जान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जन्नत, मैं यहाँ पर भाभी जान के साथ बहुत देर से बातें कर रहा हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी भाभी जान मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल होकर बात कर रही हैं। क्यों भाभी जान? मुराद के कहने पर इनायत हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाती है तो जन्नत इनायत के बगल में बैठ जाती है और मुराद को देखते हुए कहती है, वो ऊपर से दिखाने के लिए ये कह रही है, लेकिन मुझे पता है ना कि तुम्हारी बातें कितनी पकाऊ होती है। भाभी जान का आधा दिमाग खराब हो गया होगा, पर तुम्हें कुछ कह नहीं पा रही है। बेचारी मेरी भाभी जान, आने के साथ ही तुमने इन्हें आधा पागल कर दिया है, और बचा हुआ पागल तुम कर दोगी, मुराद ने मुंह बनाते हुए कहा। उन दोनों को ऐसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ता हुआ देख इनायत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मुराद की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपने एक हाथ की उंगली को उठाते हुए जन्नत की नाक की तरफ ले जाता है और कहता है, जन्नत, ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है मेरी नाक को? जन्नत ने घबराते हुए अपनी नाक को छू कर देखा और मुराद से सवाल किया तो मुराद ने उसकी नाक की तरफ बड़ी हैरानगी की तरह देखते हुए कहा, तुम्हारी नाक वो बड़ी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर बस एक नाक ही बची है, और तो कुछ है ही नहीं। इसी के साथ ही मुराद जोर जोर से हंसने लगा और उसकी बात सुनकर इनायत भी मुस्कुराने लगी। उसे पता चल गया था कि मुराद जन्नत की टांग खींच रहा है। अच्छा, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब्बू और रियाज भाई जान को बता देना चाहिए ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की नाक कितनी बड़ी है। जन्नत ने जिस तरीके से इतराते हुए मुराद से ये कहा था उसके चेहरे की मुस्कान एक मिनट में दूर हो गई। ये देखकर इनायत और जन्नत दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि मुराद के चेहरे पर ऐसे लग रहा था जैसे कि 12 बजे हुए हैं। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। मुराद घबराते हुए जन्नत को देखकर कहता है, तुझे कैसे पता इस बारे में? जन्नत स्टाइल से अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठती है और अपने नाखूनों को देखते हुए कहती है, मैंने और अमल ने तुम दोनों को एक साथ देखा था कैफेटेरिया में। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले तुम दोनों गुलाब की पंखुड़ियों को हवा में उड़ाते हुए अपने प्यार को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों का वो प्यार भरा नज़ारा देखकर हमारा दिल इतना भर गया था कि हमसे तो रहा ही नहीं गया उसकी तस्वीर लिए बिना। अभी भी सेफ है मेरे फ़ोन में, तुम कहो तो दिखा दूँ अब्बू को। अम्मी और अब्बू अपनी होने वाली बहू की तस्वीर देखकर बहुत खुश होंगे। जिस तरीके से जन्नत ने ये बात बना बनाकर कही थी ना, उसकी हर बात को सुनकर मुराद के चेहरे का रंग उड़ चुका था और ऐसा लग रहा था कि जन्नत के पास उसकी दुखती रग है। तुम क्या चाहती हो जन्नत? मुराद ने घबराते हुए पूछा तो जन्नत ने भी इतराते हुए कहा, तुमने जो अभी अभी मुझसे कहा ना मेरी नाक के बारे में, बस उसके लिए मुझसे माफ़ी मांग लो। ठीक है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जन्नत मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी नाक दुनिया की सबसे अच्छी नाक है, और ये इतनी अच्छी है कि मुझे पता है ये दूसरों के कामों में नाक नहीं अड़ाती है। तुम्हारी नाक को तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे सुंदर नाक का दर्जा दूंगा। अब खुश हो जाओ और जल्दी से अपने फ़ोन से वो तस्वीर डिलीट कर दो। मुराद ने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से जन्नत को देखते हुए कहा, पर जन्नत मुराद को देखते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। अरे, वो तस्वीर तो मेरे पास तुम्हारा सबसे बड़ा सबूत है, जिसे दिखाकर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी और तुमसे अपने सारे काम करवाऊंगी। जन्नत ये कहते हुए खुश हो रही थी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको अभी बताता हूँ। ये कहते हुए मुराद ने सोफे पर रखा हुआ तकिया उठाया और जन्नत को मारने के लिए आगे आता है। जन्नत भी जल्दी से इनायत के बगल में रखा हुआ तकिया उठाती है और मुराद को मारने लगती है। देखते ही देखते उस कमरे में जन्नत और मुराद की पिलो फाइट होने लगती है। पूरा कमरा हंसी से भर गया था। बिस्तर पर, सोफे पर और फर्श में हर जगह सिर्फ तकिए ही नजर आ रहे थे। जन्नत और मुराद एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। इनायत उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी और वो खुलकर हंस रही थी। एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई थी। जिंदगी में ये जो छोटा सा खुशी का पल आया था, वो उसके मजे ले रही थी।